नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, विकसित भारत के सपने को साकार करने में कला व संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस 6 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की आर्थिक बदहाली के लिए पूर्व भाजपा सरकार को ठहराया जिम्मेदार। और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का आरोप, प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर, कांग्रेस के अपने ही लोग सरकार की कार्यशैली पर उठा रहे हैं सवाल। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में कला व संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिमला में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा सेवा पर्व के अवसर पर आयोजित विकसित भारत के रंग कला के संग चित्रकला कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए उन्होंने ये बात कही। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना और जनधन जैसी अनेक योजनाओं ने राष्ट्र की विकास यात्रा को नई गति प्रदान की है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर भी इस कार्यशाला में विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र के आधार पर परिवर्तन और प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रही है। इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधारों के माध्यम से देश के युवाओं को सशक्त बना रही है और राष्ट्र को ज्ञान की महाशक्ति बनने में मदद कर रही है। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले 11 वर्षों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक कौशल, रोजगार और सफल उद्यमी बनने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करके युवाओं को सशक्त बनाने के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य किया है। इस दौरान भारत ने स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक अपनी शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में तेजी से प्रगति की है। निपुण भारत मिशन, पीएम श्री योजना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा और राष्ट्रीय ऋण रूपरेखा जैसी पहल शिक्षा के लचीलेपन, बहुविषयकता और अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देती है। इस वर्ष 29 अप्रैल को नई दिल्ली में युगम सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार ने 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए देश की शिक्षा प्रणाली का आधुनिकीकरण कर रही है।
देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। इसे शिक्षा के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हम भारतीय एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव भी देख रहे हैं।
सरकार के प्रयासों से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों सहित उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या 2014-15 में 51,000 से बढ़कर इस वर्ष 70,000 से अधिक हो गई है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला से 6 मोबाइल फॉरेंसिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हर वाहन की कीमत 65 लाख रुपए है, जो अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित ये वाहन घटनास्थल पर ही साक्ष्य जुटाने, उनका विश्लेषण करने और अपराधों की प्रारंभिक जांच को तेज व अधिक सटीक बनाने में पुलिस को महत्वपूर्ण सहयोग देंगे।
जहाँ भी कोई घटना घटती है, उस घटना की सही साक्ष्य एकत्रित किए जाए, उस दृष्टिकोण से ये मोबाइल फॉरेंसिक वैन जो है बहुत ज्यादा मायने रखती। कई बार क्लाइमेट चेंज के कारण डिजास्टर हो रहे हैं और उसमें कई लोगों की डेथ हो रही है, कई शव हमें दूर मिलते हैं, उस समय उनके DNA मोबाइल वैन के द्वारा हम जाकर चेक कर सकते हैं। इन मोबाइल वैनों का लेने का उद्देश्य है कि जहाँ भी घटना घटित हुई है वहीं से सैंपल को एकत्रित कर वहीं घटना की जानकारी को अपने पास लाने के बाद सही रूप से उसको अमलीजामा पहनाने की कोशिश हमारी सरकार की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सीमेंट पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया है और विपक्ष बेवजह इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज अभी तक प्रदेश को नहीं मिला है। मुख्यमंत्री ने HRTC पेंशनरों और HPTDC के कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलने के मुद्दे पर कहा कि अगले 4-5 महीनों तक कर्मचारियों को सैलरी में देरी हो सकती है, लेकिन सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने प्रदेश की आर्थिक बदहाली के लिए पूर्व भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।
पेंशन वाला है कोई भी, उसमें थोड़ी डिले हो सकता है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों रुपया का फायदा हुआ उनकी सरकार के समय, और जिस प्रकार उन्होंने हिमाचल प्रदेश की संपदा को लुटाया, उसका नुकसान है। पर मैं सिस्टम को ठीक कर रहा हूँ, आने वाले समय में देरी है, 4-5 महीने की बात है, तो उसके बाद ये ठीक हो जाएगी।
ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अपने प्रदेश दौरे के दौरान 3 अक्टूबर को बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के स्थापना दिवस में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल करेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर फिजूल खर्ची को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि सरकार के पास जनहित के लिए पैसों की कमी है, जबकि अधिकारियों, विधायकों व मंत्रियों के पास विदेशी दौरों के लिए पर्याप्त धन है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और कांग्रेस के अपने ही लोग सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपए की सहायता राशि पर मुख्यमंत्री आभार जताने की बजाय केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।
केंद्र ने मदद करने के लिए अपनी एक कमिटमेंट दिखाई है। जब से हिमाचल बना है, हिमाचल प्रदेश में पहली बार आपदा की घड़ी में कोई प्रधानमंत्री प्रदेश के अंदर जायजा लेने के लिए आए, आपदा प्रभावित लोगों को मिले और 1500 करोड़ रुपए मदद का ऐलान करके गए। अगर प्रदेश सरकार की मंशा यही है कि जो कुछ भी करे केंद्र करे, तो मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ कि कोई नैतिक अधिकार को सत्ता में रहने का नहीं।
न्यूजीलैंड के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में उच्चायुक्त पैट्रिक जॉन राटा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और न्यूजीलैंड में कई समानताएं हैं और बागवानी क्षेत्र में सहयोग से प्रदेश के बागवानों की आर्थिकी में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड की विशेषज्ञता के सहयोग से प्रदेश आधुनिक, सतत और जलवायु अनुकूल तकनीकों को अपनाकर सेब और नाशपाती की खेती में एक नए युग की शुरुआत करेगा। इस अवसर पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव साझा किए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी में भारी राहत दे रहे हैं, मगर प्रदेश सरकार टैक्स का बोझ लादकर लोगों की परेशानियों में इजाफा कर रही है। सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने रोजमर्रा की वस्तुओं पर जीएसटी कम करके प्रत्येक परिवार को हर महीने 5000 रुपये तक का लाभ पहुंचाया है। रेहड़ी फड़ी तहबाजारी यूनियन ने सीटू के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर आज शिमला में प्रदर्शन किया। इस मौके पर सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने नगर निगम शिमला पर गैर कानूनी तरीके से तहबाजारियों को उजाड़ने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट की अवहेलना कर रहा है।
स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है वो कहता है कि जहाँ की जो जनसंख्या है किसी भी जगह की, उसका लगभग 2.5% तक भी वो तहबाजारी में बस सकता है, वहाँ काम कर सकता है। तो अगर शिमला की जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो 7500 होने चाहिए थे यहाँ तहबाजारी, यहाँ तो 1000 लोग भी नहीं है तहबाजारी। ये तर्कसंगत नहीं है। जो कानून है स्ट्रीट वेंडर्स कानून में साफ लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को अपना तहबाजारी का काम करने का अधिकार है।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने जमीन बचाओ मकान बचाओ समिति का गठन किया है। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता व विधायक त्रिलोक जमवाल को इस समिति का संयोजक, बिहारी लाल शर्मा को सचिव, जबकि सुधीर शर्मा, राकेश जमवाल और बलवीर वर्मा को सदस्य नियुक्त किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, विकसित भारत के सपने को साकार करने में कला व संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस 6 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की आर्थिक बदहाली के लिए पूर्व भाजपा सरकार को ठहराया जिम्मेदार। और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का आरोप, प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर, कांग्रेस के अपने ही लोग सरकार की कार्यशैली पर उठा रहे हैं सवाल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।